से 9 वर्षों में से 8 वर्ष तो Έκλεψε εσύ σε λίγο τα λοξοβάσματα μου. Έκλεψε εσύ να μην τα έκλεψε. Το κόλμα γονίμου. Ναι. Το πακίου άκλεψε το γονίμου. Τι σημαίνει εσύ καλό πόσο του αγάλετε το γονίμου. Δεν
मानुषी तनुमा सिद्धम्
प्रयोग हुए केवल भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने कभी कभी ऐसे जन मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। प्रकट होकर क्या करते हैं, भगत तादृश ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान राम को संबंधित दस अवतार आदि होता है, प्रकट होकर ऐसे ऐसे लीला चरित्र करते हैं जिनको सुन करके जिनको बोल करके हम जैसे जी को भाग हो जाए, इसलिए सब करते हैं। इसलिए भगवान ऐसे विलास करते हैं। ये कहा था सुनने के लिए क्या वस्तु है, इस संसार में सुबह से शाम तक जब तक हम सो नहीं जाते तब तक कसर कसर कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, कान तो खुला ही रहता बंद नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ सुनते ही रहते, सुनने की सुबह से वो सुन सुन करके हम कर्मों में मन से फंसते जा रहे हैं। एकमात्र ऐसा श्रवण वस्तु है जिसको सुनने से आपका बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप फिर आपके जन्म संसार से आना नहीं पड़ेगा। यही जो श्रवण वस्तु है, ये जो सुनने का जो विषय वस्तु है वही भगवान के लिए, इसलिए भगवान विदा करते हैं इसको सुन करके हमारा उद्धार हो जाए। तो भगवान इस नौ वर्षों में अपने प्रतिनिधि रूप में प्रकट होते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा को स्वीकार करने के लिए। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, भक्तान जगत विशाम सर्वलोक निष्प्रम सुहृदम सर्वभूतानम भक्ताम शांति इच्छति। कोई व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है, सब शांति चाहते हैं, कोई नहीं चाहता शांति, सब विश्व बनना चाहते हैं। इस फॉर्मूला भगवान बताते हैं क्या सूत्र है, शांति सूत्र क्या है, एक शांति के सूत्र क्या है, न केवल इतना जान लेने से काम बन जाएगा शांति प्राप्त हो जाएगा, क्या जानने से ना भक्तानं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, भगवान की तो मैं सारे यज्ञ के तपस्या के श्री भक्ता हूँ, सब लोग महेश्वरम जितने लोग हैं जिनमें से जितने मालिक जितने ईश्वर है उनके भी वहां ईश्वर मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानां जितने प्राणी है, केवल मनुष्य नहीं 84 लाख प्रकार के जितने प्राणी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि जीव योनि, सभी के सुहृद हूँ सर्वभूतानां, इसी को जो जान लेता है वही शांति प्राप्त। भगवान तो मालिक है ही है, एक हम सब मानते हैं, सब लोग मानते हैं भगवान को ऊपर वाला और बड़े आदमी हो मालिक है, लेकिन भगवान सुहृद कैसा है उसको समझने में बड़ा दिक्कत होता है। सुहृद शब्द का अर्थ है बंधु, कभी कभी हम फ्रेंड कहते हैं इसको, बंधु कहते हैं, दोस्त कहते हैं, नंद, और कभी कभी सुहृद भी कहते हैं, उनमें से थोड़ा सा अंतर है। जो बंधु बांधव होते हैं वो हमारा कल्याण तो करते हैं, लेकिन वो कल्याण थोड़ी समय के लिए कल्याण करते हैं, आत्यंतिक कल्याण नहीं, हमेशा कल्याण हमारा नहीं कर पाते। वो हमारा कल्याण करना चाहेंगे, इससे हम थोड़ा खुश होंगे, उसमें उनका भी फायदा होगा, उनका स्वार्थ नहीं होगा, जिसमें किसी प्रकार कल्याण करना तो स्वार्थ नहीं है, आप प्रकट से जानते हैं आपके पास धन संपत्ति हो कितने फ्रेंड आपके पास करने के लिए, खत्म हो गए कोई देखेंगे पूछेंगे फोनिंग नहीं करेंगे, अन्य को बोल क्योंकि सब अपना अपना स्वार्थ है, इसीलिए दोस्त बनते हैं बंधु बनो। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया जो पारिवारिक जन है अपने अपने पुत्र अपने परिजन आदि भी उनको भी चोर दस्यु पशु के रूप में कहा गया, वो भी आपको सोचते हो आपसे स्वार्थ के लिए अपने से जुड़ते हैं अपने आप, इनका भी स्वार्थ नहीं था, केवल निस्वार्थ पर बंधु केवल भगवान है और कोई हो ही नहीं सकता, बिना स्वार्थ कोई नहीं हो सकता। भगवान कैसे रहते हैं, बोलते हैं कि बाकी दोस्त बाकी परिजन तो बनते नहीं, वो
कोई पिता तो तभी पिता बनेगा जब पुत्र होगा तभी, नहीं तो पिता पदवी से मिल ही नहीं सकता। शादी होने के बाद वो पत्नी की पदवी प्राप्त करता है, पत्नी ऐसे बनते हैं ना, बाकी स्वजन परिजन से बनते हैं, बाहर से आते हैं बनते थोड़े दिन रहते फिर चले ही जाते हैं, क्योंकि भगवान का पोस्ट सुरूप हृदय में ही रहते हैं, तो बाहर से सुनाई नहीं, बाहर से तो आते नहीं, हृदय में ही बैठे हैं, हमको भले दिखाई ना पड़े, अंदर से बैठ करके हमारा सुख हम कल्याण चिंतन करते हैं, अंदर से बैठ करके बाहर से नहीं देखते, हृदय में बैठे बैठे हमारे कल्याण करते हैं, इसे सुहृद कहते हैं, केवल हमारा कल्याण चाहते हुए हमारे अंदर बैठे हुए कल्याण चाहते हैं। इसे कहा गया कि हम अभी मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म है, अपना कर्म का फल से हो सकता है ना कोई किसी को की उत्तर जन्म में जा सकते हैं, आप चाहे किसी भी जन्म में चले जाए, कीड़े मकोड़े सरिसृप कीट जन्म में चले जाए, लेकिन ये याद रखिए अपने सुहृद प्रेत भगवान आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब छोड़ सकते हैं आपको, शरीर जब छूट जाता है मतलब शरीर रह जाता है, वो आत्मा छूट जाता है, शरीर से आत्मा विलीन हो जाता है, तब जितने बंधु बांधव आपके निकट स्वजन परिजन आपके मन से छांग देकर भाग जाएंगे, यानी मुखाग्नि दे देंगे आपको, मुख मुखाग्नि से कुछ अच्छा लगता है, जो अपने अति निकट स्वजन होगा वो आपके मुख मुखाग्नि भक्त करेगा, इसलिए कोई स्वजन नहीं, लेकिन आप चले कीड़े मकड़े जन में चले जाए भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा रूप में आपके अंदर फिर भी बैठे रहेंगे, आप किसी भी जन से देवता बन जाए, स्वर्ग बन जाए, भक्त बन जाए, कीड़े मकड़े पशु पक्षी जलचर स्थलचर नवचर किसी भी बन जाए, भगवान कभी भी नहीं छोड़ सकते, हमेशा आपके हृदय में आपके पास परमात्मा के रूप में बैठे, क्यों कभी पास एक सेकंड के लिए भी हमको त्याग नहीं कर सकते, छोड़ते नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, क्यों बाकी जितने भी हमारे मित्र अभी तक हुए हैं इतने नजदीक इतने अपने निकट मित्र क्यों ना हो छोड़ देते हैं, कभी कभी होते तो चले जाते हैं, फिर मिलते हैं, भगवान एक सेकंड एक क्षण के लिए भी हमको छोड़ नहीं सकते हैं, क्यों क्योंकि भगवान दूसरे आशा रखते हैं कि अगर मैं एक मिनट छोड़कर कोई तो दूसरे काम में लग जाऊं तो फिर उसी समय में वो मेरे लिए शरणागत हो जाए, तो क्योंकि अभी तक तो विमुख होकर हम पड़े, भगवत विमुख होकर के हम दुख हो गए हैं, भगवत अंत नहीं हुई, क्योंकि भगवान हमारे पास में खड़े होकर के हमें हेल्प करते हैं, इसलिए कि कभी ना कभी तो मेरे ओर थोड़ा देखेगा, मेरे ओर मुख करेगा, मेरे उसे मुंह मोड़ जाएगा, बाइचांस कभी किसी प्रकार से अगर मुंह मोड़ कर मरे हुए देखेगा, अगर मैं यहाँ नहीं हूं तो मैं तो कल्याण कैसे हूं, इसलिए एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं हमारे साथ, हर जोड़ी में हर समय में हर स्थिति में हमारे साथ रहते हैं, अंदर से बैठे रहते हैं, वो अपेक्षा करते रहते हैं कि कब कितने भी दुख भोगते होते हुए कितने कष्ट भोग कर भी एक बार मन में आ जाए प्रभु अब बहुत हो गया, इतने कहकर भी उनकी ओर थोड़ा देख ले बस बाकी काम उनका है, बाकी वो संभाल लेंगे, हमको केवल इतना तक करना है, हमारा ड्यूटी केवल इतना तक है, क्या एक बार भगवान की ओर मुंह मोड़ कर देख ले प्रभु दर्शित, बाकी सब काम वो संभालेंगे, हमको कुछ नहीं करना, हम लोग कुछ जानते ही वो हमको खींच लेंगे, केवल एक बार उनकी ओर मुख करके देख लेंगे, कभी कभी हम मुंह मोड़ कर देख लें अगर वो ना हो तो, इसलिए हमेशा वो तैयार रहते हैं, कभी ना कभी देखें उपदृष्टा भरता भुगता भूस्कर साखी बन करके पास में खड़े होकर उपदृष्टा पास में खड़े होकर देखते रहते हैं, क्या क्या हम गड़बड़ी करते हैं, क्या गलती करते हैं, क्या पाप करते हैं, सारे देखते रहते हैं, साखी बनकर देखते हैं, कुछ नहीं करते, खड़े होकर देखते हैं, ठीक है ठीक करते जाओ करते जाओ, कभी ना कभी तो मेरे ओर थोड़ा देखेगा तो मैं पकड़ूंगा आपको, सारे तरह आपको माफ कर दूंगा, हम सब बाप जो मुख्य स्वामी मां सुसर करो मत, मैं उनके पास ही खड़ा हूं, लेकिन तू मुख मुझे देखता ही नहीं कि मैं तेरे पास में खड़ा हूं, यही का दुख है हमारा, इसी के लिए तो हम दुख भोगते हैं, शांति भोगते हैं, ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا, احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھگوان ہمارے پاس میں کھڑے. ایک بات سوچنے کی رائے ہے, کبھی کبھی اگر ہم کو پتا چل جائے کہ کوئی بہت بڑے افسر, بہت بڑے دھنی مانی, بہت بڑے شکتیشالی ویکتی کسی کارن سے ہمارے اوپر تھوڑا کٹالو ہو گیا, ہم پسند کرتے ہیں, پرم کرتے ہیں ہم کو, اور ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے کوئی بات نہیں, ہم ساتھ ہوں, ایسا بول دیں تو آپ کو کتنی شانتی ملے گی, ارے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ, اگر نوکری نہیں ملی وہ مجھے مینٹین کرے گی, تو کچھ بھی ہو جائے میرے کو ہم کو کون چلائے جائیں گے, اتنے بڑے آدمی کروڑوں پتی آدمی ہے اور اتنے ایسا پدوی میں ہے, اتنے بڑے پوسٹ, اتنے بڑے سبق وہاں ہے, اگر میرے اوپر ان کا اچھا سمپرک, میرے ساتھ ان کا اچھا سمپرک ہے تو مجھے جواب دیں میں ساتھ ہوں, تو ہم کو کتنے اسوستھ معلوم ہوتا ہے, ہم کتنے خوشی محسوس کرتے ہیں, کتنے شانتی محسوس کرتے ہیں, کوئی ہو نہ ہو وہ تو ہے, ہم کو دقت ہو جائے کچھ بھی گڑبڑ ہو جائے میرا پیچھے ہے نا, اتنے بڑے آدمی میرا ساتھ ہے ان کو فون کر دوں, ہم کو بتا دوں گا اور دقت دیں گے سر, کوئی بھی گڑبڑ ہو جائے ان کو بتا دوں گا, ہم بالکل یہ بن کے رہتے ہیں, شانت بن کر کے بڑے چین سے رہتے ہیں, لیکن بیچ اس ویکتی کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں سے ان کا کتنا سامرتھ ہوتا ہے, اتنا کچھ زیادہ سامرتھ تو ہوتا نہیں, سرو سامرتھ ہم کو ہوتا ہی نہیں, وہ تو مرے گا, بیماری پڑے گا اور ان کا دھن سمپتی لوٹ ہی جائے گا, ہر پرکار کے بادھتاؤں کے بادھتا کرنا وہ بھی رہتا ہے, اتنے بڑے ویکتی تو ہے نہیں, لیکن بھگوان جیسے ویکتی سرو سمرتھ ہے, سروجھ ہے, اپنے برہن گتی ہے, سرو ایشوریہ کے نلے ہے, سرو گوگن دھام ہے, کوئی کرپال بادھک ہے, کسی پرکار کے مایا, کسی پرکار کے کاڑ, کسی پرکار کے وستو ان بادھک نہیں کر سکتا, اور اس سنسار میں اس برہن میں کوئی ایسے وستو نہیں ہے جو ان کو انمول ہو, جو ان کو پراپت نہ ہو, کس کے لیے کسی کے بھروسہ کرے, کس کو حق بتائے مانگے, کہیں سے نہیں, پورن سوراج سوادھین سرو سمرتھ سوادھین سرو کے پورن کام پورن برہم ایسے سرو سامرتھ بھگوان جس کے فرینڈ بن جائے, جن کو بولنے میں کرا سکتا ہوں, وہ کتنے شانتی پراپت کرے گا, کتنے چین سے رہے گا, وہ میرا ساتھ, اسی کو کہتے ہیں شانتی سوتر, اسی کو جان لو میں تیرا سرود ہوں, وشواس کرو ایک بار تم شانتی ہی شانتی ہے, کچھ چنتا نہیں رہے گا, کہاں کو ٹینشن ہے, میں تیرا ہونا ساتھ میں, کوئی کھڑکیاس کے بعد کے ہاتھ میں بدلے میں تیرا پیچھے تو ہم چین سے رہ جاتے, تو یہ چین تو بکار ہے, میرے سر سے رادھا مان ہے, جب رادھا مادھو جیسے ویکتی آ کر تب چھت پیٹ میں ہاتھ کھو کر بول رہے کیوں ڈر رہے میں تیرا کوئی ساتھ میں ہوں نا, تو کتنی شانتی آپ کو پراپت ہوگا, سوچ سکتے ہیں, تو انمان لگا سکتا ہوں کتنا آشوستھ ہو جائے, سوچا ہی نہیں جا سکتا, درد بنی آسان کو پراپت ہو, اسی کہتے ہیں درد پر مہام سن پریچتی, اسی کے لیے بھگوان رام اوتار منشی اوترمائے آ کر گھوشنا کر کے بولتے ہیں, منشا ادھار کے لیے آئی, جب ویشن نے آیا راون کو سمجھا رہا تھا کہ ان کے ساتھ مائی بات رہو, وہ دھرم پروش ہے, ان کی پتنی کو دے دو, راون نے بول یہ منشیہ ہے, میں آخر سوں یہ میرے سے دنیا ہے, ان کے آدمی میں سرنڈر کو کیا لڑا, اس کو نکال دیا دیش سے, دیش سے نکال دیا, کیا کرے گا وہ سر, منتر سے باہر آ گیا, اپنی گاڑی لے کر کے چلا, میں کہاں جاؤں کہاں جاؤں, بھارتی جی بولے جن کا نام لیتا ہوں کہاں جاؤ سر, ہوں جاؤ تو انہوں نے اپنے روپ سے اور سمندر پار کر کے آیا, بھگوان نے جہاں سے تو بند بنا رہے تھے وہاں آیا, جب آیا بھگوان کے جو پوچھ تھے بی ایس ایف جو ہے بڑے سیکورٹی پوچھ جب تھے, وہ لوگ سب دیکھے گاڑی آ رہا ہے, وہ نیم پلیٹ نمبر پلیٹ لگا رہا ہے, اپنا جنم تھا ستر پتی کا تھا, ستر پتی کا نمبر پلیٹ گاڑی کہیں تو بالکل سمجھ گیا, بولے ان کو تو ختم کر دینا چاہیے, لیکن وہ آواز آ رہا تھا رام 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 جے شری رام جے شری رام, آواز آ رہا تھا, بھگوان رام نے اعلان کیا ہے, گھوشنا کی کہ کوئی میرا نام لیتا ہے اس کو کوئی کشٹ نہیں دے سکتا, اسے پکڑ کے میرا حوالے کر دوں, میرا سامنے تو کیا کریں, نمبر پلیٹ تو ان کو کنفرم ہے اور سکر پتی کی لنگا پہلے, لیکن کیا کرتے پھر ان کو پکڑ کر کنسلٹ کیے اپنے سینئر سے, میں اس کو نظر بندی میں رکھوں, نظر بندی میں ایک پرکار کا اریسٹ ہوتا ہے جو آپ گھنٹے نہیں مانیں گے, رسی یا چین سے نہیں مانیں گے, لیکن بندی بنے جاتی ہے, ये सब रिस्पॉन्स आदमी मतलब रखते रहेंगे, क्या करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे उठता है, कैसे प्राप्त करता है, पूरा नजर में रखते हैं। तो इसे नजर मंदिर में रखकर कुछ लेकर आए, भगवान को सजाना पड़ेगा। भगवान के पास जैसे लेकर आए, भगवान नाम के सामने तुरंत पूर्ण दंडवत प्रणाम कर लिए। जय श्री राम, जैसे जैसे दंडवत प्रणाम करते भगवान अपने आसन से उठ करके उनको तो अपने पर कमल में उठा करके बड़े में लगाए, निपट करके आंसू से उनको अभिशक्त करके उसी समय उसी स्थान में घोषणा कर दे सभी के सामने, सारे मंत्री जंत्री मंडल से बैठे सभी के सामने घोषणा कर दे, आज से अभी से मैं भीष्म को लंका के राजा के रूप में प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, मन बेच करके घोषणा कर दे लंका के राजा ऐसे भीष्म होगा। तो भगवान राम के जो मंत्रिमंडल जो प्रतिष्ठा मंडल से मंत्री संतरी थे उसे बोले सारे अध्यक्षन क्या बात है, हमारे को सुनो क्या ना, आप तो घोषणा कर दिए अभी यहीं पर विभीषण को राजा बना दिए ना बना दिए क्या आप विश्वास करे, हमारा ये डाउट है कि अभी पोस्ट की वैकेंसी वैकेंसी नहीं है, उसी को खूब बैठे जो वैकेंसी हो उसी को अपॉइंटमेंट कर दे, अभी लंका का राजा का पोस्ट जो है खूब बैठे हमारा बैठा हुआ मना थोड़ी वो रिकॉर्डिंग नहीं किया, रिकॉर्डिंग नहीं किया है अभी आज के दिन तो भूल बैठा हुआ है वो सुखी नहीं, आप उनको किसे राजा बना देंगे। भगवान हंसने लगे उसमें क्या बात है, मेरे शत्रुघ्न बना रहा हूँ जहाँ तक जुड़े करके रावण को मारूंगा, मारने के बाद उनको राजा बना दूंगा। तो ये सब आप तो बड़े बड़े हंसने को उन्होंने क्या, अभी सेतु बंद बन रहा है, अभी बंद ब्रिज कभी कंप्लीट होगा, लड़ाई होगा, लड़ाई का रिजल्ट क्या होगा अभी नहीं, अभी अभी से आप अनाउंस कर दिया राजा बना दिया तो सुखी नहीं, अभी कौन मरेगा नहीं मरेगा क्या होगा पता नहीं, अभी राजा बन रहा अभी से राजा जैसे बन गया, अगर युद्ध से कोई जीत गया हार गया कुछ हुआ अब मानते हैं आप सबके संकल्प है अब उनको मार ही डालेंगे, लेकिन भावना तो बहुत दूर है ना, ब्रिज कभी कंप्लीट होगा, लड़ाई युद्ध होगा तब वो मरेगा, तब अगर काल उनको पता चल गया रावण के गुप्त तो अभी घूम रहे हैं, पता चल गया उनको कि मेरा भाई विभीषण जा कर एक दंडवत एक दंडवत मार दिया उसने राजा का पुष्ट मिल गया, एक दंडवत में लंका के राजा ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, केवल एक प्राण रावण होने का छोड़ो बड़ा झगड़ा बाद में देखा जाए, मैं भी एक दंडवत मार कर तुम फिर तो अभी फ्लाइट बुकिंग करेगा आएगा आकर के कल आकर के दंडवत मार दे, अभी तो बीच कंस्ट्रक्शन नहीं प्रोजेक्ट है तो लड़ाई का कब होगा पता नहीं, अब काम आकर और अपने दंडवत मार दे तो क्या करेंगे, दूसरों को राजा बना सकते हैं उनको बता नहीं सकते थे, कैसे कैसे आप तो बात को आप सत्य प्रमाणित करेंगे, अगर रावण आप अलग दंडवत मार दे तो जब एक दंडवत प्रणाम में उसको राजा घोषणा कर देते हैं तो रावण अकेले दंडवत कर लेते क्या करें। भगवान राम उन सब का कथा सुनकर हंसने लगे, आप सब कैसे लगता है ना भगवान कैसे कह रहे इस बार भगवान राम हंसने लगे, अच्छा आपने कुछ संदेह होता क्या मेरे बाप पर, बोल दिया राजा बोल दिया तो बोल ही गया उन्होंने कहा राजा होकर ही रहेगा, हम मानते हैं आप राजा बना देंगे लेकिन रावण को युद्ध करने से पहले रावण मरने से पहले अगर आपको जंगल को मार दे तब क्या रावण को मार सकते हैं अपने, तब क्या करेंगे बताओ भूषण कैसे राजा बनाएंगे। भगवान राम ने कोई बात नहीं अगर काम रावण आकर मुझे शरण आ जाए मुझे दंडवत कर ले अभी तो 14 साल में पूरा हो रहा है ना, ये जितने महीने में 14 साल पूरा हो गया अयोध्या का राजा मुझे मिला हूँ अयोध्या से मैं निर्वाचन से 14 साल के आया था ना 14 ईयर्स ही बनकर कम्प्लीट ना अभी कम्प्लीट हो रहा है तो रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा क्या उनको लंका का राजा बोलते हैं ना राजा बना राजा बनाऊंगा उनको एक बार प्रणाम करेगा तो उसको भी राजा बना दूंगा कहाँ का राजा बनाऊंगा भगवान के स्वभाव इतने दयालु हो इतने कृपालु हद हो जाएगा सुनकर इतने कृपा असंभव स्वभाव उनके कृपा ये कृपा के स्वभाव के कारण कहा जाता है तद अनुग्रहाय भक्तों को अनुग्रह करने के लिए मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं हमारा कल्याण कैसे होगा, भगवान गीता में भगवान जी कहते हैं मन मना भव मत भक्त भव मत आज ही मत नमस्कार करो, आज ही संभव कैसे हो सकता है? हरिमान मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। किसको पूजा करेंगे? भगवान को मुझे पूजा करो, उनको कैसे पूजा करेंगे? पूजा करने के लिए व्यवस्था को करना पड़ेगा ना, वो व्यवस्था करने के लिए भगवान स्वयं मूर्ति बन करके आजकल तुम बैठ जाते हो, ये पूजा करेंगे, सारी व्यवस्था कर देते पूजा के सामग्री मंत्र अजंत मंत्र के साथ बोलते हम पूजा करो, तब भी हम व्रत में पूजा नहीं करते, मुझे प्रणाम करो, मुझे पूजा करो, मेरा काम सब करो। श्रीमद भागवत के जो अंतिम स्कंद है, द्वादश स्कंद के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, कोई जानते हैं क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामे दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। ये लास्ट भाग से भागवत इसमें कहा गया है, ये भगवान ऐसे हैं जिसका नाम कीर्तन मात्र से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम, सारे पाप से मुक्त हो जाएगा केवल अपने नाम कीर्तन करके। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणाम दुख समय, एक मान प्रणाम कर दे दुख से खत्म, नाम दुख समय तम नमामि हरिं परम, ऐसे हरि के लिए प्रणाम करता हूं, आप बनेंगे ये तुम्हारा कुछ में विश्वास नहीं होता। क्यों बोले? कम से कम 20-25 साल हो गया, डेली दो बार तो मिनिमम प्रणाम में करता ही हूं, हमारा तो दुख जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, घटता तो नहीं। आप बोलते प्रणाम दुख समय, एक बार प्रणाम करने से कुछ फायदा बन जाता है, दुख से बढ़ जाता है, हमारा दुख तो बढ़ता नहीं, बढ़ते जा रहे घटता तो नहीं है ना। हम प्रणाम करते हैं डेली दो बार तो करते हैं ना, उसमें कितने साल हो गया करते, अरे साल में 365 दिन कम से कम 730 बार तो दंडवत करते हैं ना प्रणाम, तो हमें इस दिन में तो दंडवत करते ही है। तो दुख किसका खत्म हो गया नहीं, क्वांटिटी तो बढ़ते जा रहा है, और टेंशन बढ़ते जा रहा है, लगता तो है नहीं। सो कैसे शास्त्र वचन क्या होता है तो कहा गया प्रणाम में दुख समान है, हम तो प्रणाम करते ही आ रहे हैं, कभी कभी दो दो तीन तीन बार चार चार बार कर लेते हैं, जितनी बार आए कितनी बार करते हैं, लेकिन कैसे तो कैसे घटता वो कुछ है नहीं, बढ़ता हो घटता नहीं है ना। सो कैसे उसका रहस्य फिर क्या है? इसका रहस्य यह है, भगवान कहते हैं इस स्थिति पर भगवान घोषणा करते हैं, भगवान राम ने इसी भीषण प्रसंग घोषणा करते देते हैं, शत्रु एव प्रबंधनाय तव अस्मिन् इति जाचते, अभयं ददामि तस्मै सर्वदा एतत् व्रतं मम, मुझे मेरा ये व्रत है, शत्रु को तो एक बार भी कोई हाथ उठा करके ये घोषणा करके बोलते हे प्रभु मैं आपका हूं आप मेरे हैं, एक बार कोई ऐसा बोल दे सच्चाई से तब तो मैं सदा सर्वदा के लिए उसको निर्भय करूंगा, ये मेरा व्रत है, ये मेरा व्रत है, तो व्रत नहीं तो फिर हम इतनी बार करते हैं क्यों नहीं करते हम? उसका कुछ रहस्य यह है, हम अनिष्ट सब अपने आप को पूछे, मैं किसी बोलते नहीं पूछ रहे, हम सब जानते हैं, हम भी आपके खत्म हैं। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो कोई ना कोई हमारा स्वार्थ रहता है, इसी के लिए प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, मंदिर में कोई लोग आते हैं इसलिए, मंदिर में आने के लिए कुछ ना कुछ हेतु चाहिए, हेतु के बिना मंदिर में आएंगे नहीं, प्रणाम नहीं कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तक तो हम देखते हैं भक्तों लोग महात्म में पंचले आश्रम से आते हैं ही लगाने के लिए, ये भी जरूर प्रणाम करने का प्रेजेंट लग जाएगा, कभी अथॉरिटी तो कहीं आए पास में इसलिए आते हैं, करती में इसलिए आते हैं कि कम से कम आपसे तो ना पड़ जाए, पूछना कुछ हेतु तक रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा आसन तभी शुरू होता है जब आप भक्ति करते हैं, भक्ति का दो लक्षण देखते हैं भक्ति का, हाँ हेतु की अभी तक का हेतु की हो नहीं, जब जब हम प्रणाम करते हैं कुछ ना कुछ तो बात रहते ही करते, केवल भगवान के लिए प्रणाम हम नहीं करते, हमारे लिए करते, जब हम केवल भगवान के लिए ही काम करेंगे तब उनका आशीष रूप हो जाएगा। अब किसी का विश्वास नहीं है तो एक बार करके देखो, एक बार करके देखो, कोई विश्वास करने के लिए भी हेतु हो जाएगा, ये भी हेतु है, इसके लिए नहीं करना चाहिए, तो इसलिए होना मुश्किल है। जब इससे बचकर के एक बार कर ले तब काम बने, तब तक नहीं बने। लेकिन भगवान तो हमेशा घोषणा भी रहते, बार बार घोषणा करते हैं, अनन्य चित्त सततम व्योमान स्मृत नित्य से ऐसा नित्य भजता नाम योग भगवान हम मैं ही उनका योग क्रम को धारण करता हूँ, दूसरे किसी के द्वारा नहीं। ये फोन कर किसी को बोलते हैं थोड़ा उनका काम कर दो, देवी जी भगवान ऐसा नहीं करते, हम सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सारे संसार कर्म को ब्रह्मांड के मंत्र में मालिक है, हम उनको जाकर बोलते हैं मेरा एक काम कर दो, थोड़ा मैं आपको हमसे स्मरण करता हूँ, भगवान बोलते चलो मैं बोल भेज देता हूँ किसी को, बोले तो फोन करते हो अपने काम कर दो, ऐसा नहीं भगवान ऐसा नहीं, हम ही ऐसा करते हैं। भगवान बोलते हम मैं स्वयं जाकर आपका काम करूंगा, अगर मुझे तो चिंतन करोगे तो मैं स्वयं किसके द्वारा मैं स्वयं जा करके आपके काम करके आऊंगा, ये मेरा वचन है, मेरा प्रतिज्ञा है। लेकिन हम एक बार उनको अनन्य चित्त हो सकते थे, अनन्य चित्त या अन्य अनन्य, हम हमेशा अन्य के साथ रहते हैं, अनन्य कभी होते हैं, एक बार अनन्य होकर भगवान को पुकारे, अनन्य चित्त होकर स्मरण करें तो भगवान अपने द्वारा अवश्य निभाएंगे। किसी के लिए किसी चांस को अवेलेबल करने के लिए हमको ये सुविधा प्रदान करने के लिए हरेक लोक में हरेक वर्ष में हरेक प्रकार जीव जंतु के लिए भगवान सुलभ है, सुलभ होकर के जैसे जैसे विग्रह चाहते हैं जैसे विग्रह पर मन के सामने प्रकट है, लो मुझे पूजा करो, प्रणाम करो, मुझे भक्ति करो, ये आया नहीं। सेवा सेवा के नाम में धर्म है, सेवा संभव ही नहीं हो सकता तो सिद्धि के बिना किसी की सेवा करेंगे, कोई व्यक्ति सेवा ग्रहण करेगा तो उनकी सेवा संभव होगा, तो सेवक रूप में भगवान नित्य मौजूद है, हम तो सेवक रूप में नित्य मौजूद है, तो सारे संसार के समग्र वस्तु सेवा उपकरण, सेवा करने का उपकरण है, ये सब नित्य है, भगवान सभी रूप में नित्य है, सेवक रूप में हम सब प्राणी नित्य है, सेवा उपकरण रूप में समस्त जड़ जगत यावतीय वस्तु नित्य प्रस्तुत है, लेकिन फिर भी सेवा पता ही नहीं, क्यों सेवा नहीं होता है, कभी इसलिए रहता है कि हमारा सेवा अभिलास नहीं है, सेवा करने की इच्छा नहीं है, तो क्या अच्छा है तो भोग अभिलास है, आपाद मस्तक नाक से लेकर करके केस पर्यंत हर इन चीज को फूस फूस करके भरा हुआ है भोगने की इच्छा, जहां चांस मिले भोग लो, तब करके जी से छल करके भोग जाओ, सेवा करना ये तो तो पूरे सारे संपूर्ण शरीर को कायापलट करना पड़ेगा, पर जाकर पर इस भोग अभिलाष को निकाल कर सेवा अभिलाष को चुस्त होना पड़ेगा, तो जाकर काम बनेगा। समय हो चुका है, किसका कोई प्रश्न है? वो बोलते हैं सीता माता तो भगवान के बड़े भक्त हो, तुम सुनो लास्ट में उन्हें क्या बात करेंगे, क्यों बोलते हैं तुम बात करेंगे, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पालन करने के लिए ही वो अवतरण किए थे, तो मर्यादा पालन करके अपनी पत्नी को भी त्याग कर सकते मर्यादा पालन के लिए, ये दिखाते हैं इसीलिए पत्नी तो नित्य उनके सत्य उनसे त्याग हो ही नहीं सकता, लेकिन मर्यादा पालन करने के लिए इस धरती पर इतने बड़े त्याग इतनी बड़ी मर्यादा के पालन के लिए ही कर सकता हूँ, भगवान लोगों के ऊपर कृपा करने की क्या क्या नहीं करते, भगवान राम छोड़ दिए सीता को, हमारे महाप्रभु जो चिंता नहीं किए, 26 साल की उम्र इतने खचाखच जौवन है, इतने उनके सुंदर जो रूप आजान उन्होंने तो भिड़े होता था, सोचना था सोने जैसा चेहरा आजान बनी तो इतने सुंदर शरीर था, 26 साल की उम्र में लक्ष्मी जैसे सुंदरी विष्णु प्रिया को घर में कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई पुरुष भी नहीं था, एक विधवा माँ और पत्नी, उनके अलावा कोई घर में कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा स्थिति में वो घर छोड़कर चले गए। कितनी बड़ी बात है, भगवान राम के चार साल वाइफ भी आ गया थे, सब कुछ था, उनका क्या था। भगवान इसी किसी वैराग्य विद्या अनुभक्ति जो होगा शिक्षा पुरुषों के वाहन वैराग्य विज्ञान को सिखाने के लिए भक्ति जो भी सिखाने के लिए तो आते हैं ठीक है। धन खास भगवत महापुराण की संवेद भक्त वृंद की